ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में 4,453 करोड़ रुपए की लागत से रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए भी एक नई लाइन निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,245 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कोष की अवधि 5 साल तक बढ़ाए जाने की योजना है। लगभग 10 वर्षों की अवधि में इसके तहत 30 से 35 अंतरिक्ष स्टार्टअप को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से परामर्श के बाद 11 नवंबर से न्यायमूर्ति खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस खन्ना अभी उच्चतम न्यायालय में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में उच्चतम न्यायालय वास्तविक रूप में लोक न्यायालय के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अनूठा यथार्थ जहां उच्चतम न्यायालय जन अदालत के रूप में कार्य करती है दुनिया में कहीं और नहीं है। उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न विषयों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। इनमें आकाशवाणी के प्रस्तुतकर्ता के रूप में उनकी यादें भी शामिल थीं। साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त फ्रिक्वेंसियों पर प्रसारित किया जाएगा। यह हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR, वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज एम्स रायपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति NIT रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन श्री धनखड़ कर्नाटक के मांड्या के बीजी नगरा में आदि चुंचनगिरी विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। वे राजभवन भी जाएंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 8 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अंतर सरकारी परामर्श IGC की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। आज सुबह उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज आज 7वें अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमरीका और कतर ने बृहस्पतिवार को गाजा युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की है। हमास के नेता याह्या सिनवार की हाल में हुई मौत के बाद इसे राजनयिक प्रयासों में संभावित मोड़ माना जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद पश्चिमी एशियाई क्षेत्र की अपनी 11वीं यात्रा में अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खुलासा किया कि अमरीकी नेतृत्व में संघर्ष रोकने के पिछले प्रयास थमने के बाद मध्यस्थ नए सिरे से इसका समाधान तलाश रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आने से भी नए सिरे से कूटनीतिक दबाव बढ़ गया है और पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त कराने के प्रयासों में तेजी आ गई है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट के भितरकनिका और धामरा के बीच सतह पर पहुंचने की प्रक्रिया देर रात लगभग 1 बजे शुरू हुई। भीषण चक्रवात का कुल दायरा लगभग 250 किलोमीटर है और यह सतह पर कब करीब 4 से 5 घंटे तक रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान के केंद्रीय भाग के सतह पर पहुंचने के बाद हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान प्रभावित क्षेत्र में भारी वर्षा और समुद्र में उच्च ज्वार देखा जा रहा है। कई बड़े पेड़, बिजली के खंभे और फूस के घर ध्वस्त हो गए हैं। बड़े पेड़ गिरने से कई जगह सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। दाना से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन तूफान के कमजोर पड़ने के बाद ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को दाना से होने वाले नुकसान का सामना करने और निपटने के लिए केंद्र की ओर से ओडिशा को पूरा समर्थन देने का आश्वासन किया है। इसके